मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 18 दिसंबर 2018 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही ये विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है कमलेश कुमार कुशवाहा, आपका गांव है पचोखर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। तो कमलेश आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के मुख्य विषय के रूप में मैं न्यायिक विलंब के बारे में आपसे कुछ विचार प्रधान बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले आइए एक दो थोड़ी दूसरी खबरों को हम लोग देख लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने मालदीव के राष्ट्रपति के भारत आगमन के बारे में बात की थी। मालदीव के राष्ट्रपति आ चुके हैं, न्यूज में आपने उनकी खबर भी सुनी और आपने देखा कि न्यूज में बहुत प्रोमिनेंटली इस खबर को लिया गया है। आप अगर गौर करें, और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इन सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि तभी वो अपने लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को पकड़ सकेंगे। देखिए हमारे यहां इतने सारे हेड ऑफ द स्टेट आते हैं, राष्ट्र प्रमुख आते हैं, यात्रा पर आते हैं, लेकिन कभी न्यूज में उनको इतनी ज्यादा जगह नहीं मिलती। मैं रेडियो न्यूज की बात कर रहा हूं, मैं अखबारों की बात नहीं कर रहा हूं। रेडियो न्यूज इसलिए क्योंकि वो हमारा ऑफिशियल मीडिया है ना। तो जितनी जगह मालदीव के राष्ट्रपति को मिली है, जितना वक्त मिला है कह लीजिए, उतना वक्त सामान्यतया दूसरों को नहीं मिल पाता। वक्त अगर उन्हें अधिक मिला है ऑफिशियल मीडिया पर, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे देश के लिए उनकी यात्रा बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहां से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है मालदीव हमारे लिए? मित्रों मुझे याद आ रहा है कि जब मालदीव में चुनाव हुए थे, अभी अभी चुनाव हुए थे, उस समय मैंने मालदीव के बारे में बहुत डिटेल में आपसे बात की थी, किस तरह का देश है, भारत के साथ उसके किस तरीके के संबंध हैं। मैंने ये भी चर्चा की थी कि बीच में किस तरीके से भारत के साथ उसके संबंध मालदीव के थोड़े से तनावपूर्ण हो गए थे और उसका जो मूल कारण था वो ये है कि वहां के जो राष्ट्रपति उस समय अब्दुल्ला यामीन थे, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी और भारत ने इस इमरजेंसी का विरोध किया था। भारत ने चूंकि विरोध किया तो मालदीव थोड़ा सा नाराज हो गया और बट नेचुरल है कि फिर संबंध तनावपूर्ण होने लगे और वो चीन की तरफ अधिक झुक गया और स्थिति यहां तक आ गई थी कि जुलाई में, इसी जुलाई में मालदीव से जो कंपनियां अपना एड निकालती थी, विज्ञापन निकालती थी, उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ होता था कि भारतीय आवेदन न करें, भारतीय आवेदन न करें, यानी कि मालदीव ने भारतीय कामगारों को बिजनेस वीजा देना बंद कर दिया था, यानी कि आप मालदीव में जाके काम नहीं कर सकते और यहां तक कि छुट्टी मनाने के लिए जो मालदीव से भारत आ गए थे, मतलब वो भारतीय ही थे, मालदीव में काम कर रहे थे लेकिन छुट्टी मनाने के लिए भारत आ गए थे, तो उनका वीजा रिन्यू ही नहीं किया गया, मतलब अब आप मालदीव नहीं आ सकते। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि स्थिति कितने तनावपूर्ण हो गई थी। लेकिन चूंकि मालदीव हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, हिंद महासागर में वो स्थित है, तो आप ये कह लीजिए कि संयोग ही था कि वहां चुनाव हुए और अब जो भारत के समर्थक हैं, भारत के मित्र हैं, वो राष्ट्रपति बने हैं, तो दोनों देशों के बीच अब संबंध बहुत बेहतर होने शुरू हो गए हैं। और आपने न्यूज में सुना कि किस तरह से भारत ने मालदीव को लगभग 10,066 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है और इसके साथ ही साथ दूसरे क्षेत्रों में भी जो कुछ सहयोग और समझौते हुए हैं। तो ये एक छोटी सी खबर है, देखते हैं कि जब इनकी यात्रा पूरी हो जाएगी तो हो सकता है कि इस पर कुछ आर्टिकल्स आए और मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल आएंगे, तब हम उस पर बातें करेंगे। दोस्तों एक जो दूसरी खबर जिसे न्यूज में और न्यूज चैनल्स में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान मिला है वो है सन 1984 में भारत में जो दंगे हुए थे उनके एक आरोपी हैं सज्जन कुमार जी, जो कांग्रेस के नेता हैं और काफी प्रोमिनेंट लीडर है दिल्ली के, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मैं थोड़ा सा 1984 के दंगे के बारे में आपको बताना चाहूंगा बहुत ही संक्षिप्त में। हो ये रहा था मित्रों कि कुछ लोग खासकर भारत के बहुत जबरदस्त विरोध में खड़े थे, और उसमें जो पंजाब था, पंजाब में कुछ ऐसे सिख थे जो स्पेशली कनाडा में रह रहे थे, वो खालिस्तान की मांग करने लगे थे और खालिस्तान की मांग को वो बहुत ज्यादा तरजीह देने लगे थे कि हमें अपना अलग देश चाहिए। तो उसका नाम उन्होंने दिया था खालिस्तान, खालिस्तान। तो उस वहां फिर वो गतिविधियां इसी तरह के बढ़ने लगी, कुछ आतंकवादियों से गतिविधियां होने लगी। तो जब स्थितियां नियंत्रण से बाहर होने लगी तो मिसेस गांधी ने, उस समय प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, तो उन्होंने जो अमृतसर है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, वहां सेना भेजी। जबकि सामान्यतया ऐसे पवित्र स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर सेना नहीं भेजी जाती, लेकिन ये रिपोर्ट थी गुप्त, मतलब आईबी की, कि वहां तहखाने में जो बेसमेंट है वहां हथियार, गोला बारूद बहुत सारा इकट्ठा किया जा रहा है और देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो जब वहां सेना भेजी गई, उसे ब्लू स्टार नाम दिया गया। तो जब सेना भेजी गई तो सेना को वहां ये सब चीजें मिली, बहुत ज्यादा, मतलब फिर तो युद्ध जैसी स्थिति छोटा सा हो ही जाता है। तो आतंकवादी भी पकड़े गए, मारे गए, उस तरह की कैजुअल्टी हुई। तो इसे सिखों ने एक तरीके से अपना अपमान माना, ठीक है चलिए जो भी था, लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए वो आवश्यकता उस समय महसूस की गई थी। तो मिसेज इंदिरा गांधी के एक अंगरक्षक थे, उनके मन में भी इस बात को लेकर के मिसेस गांधी के प्रति बहुत आक्रोश था। तो जब वो अपने निवास स्थल से बाहर निकल रही थी तब उस अंगरक्षक ने गोली चलाकर श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। चूंकि जो गोली चलाने वाला व्यक्ति सिख था, तो पूरे देश में सिखों के प्रति एक जबरदस्त किस्म का आक्रोश व्याप्त हो गया और पूरे देश में सिखों के खिलाफ एक प्रकार से दंगे से भड़क गए। पूरे देश में यह घटना घटित हुई। दिल्ली में चूंकि सिखों की आबादी काफी है तो वहां बहुत ज्यादा हुई। न्यूज में, दूरदर्शन न्यूज में बताया गया कि लगभग 2400-2500 के बीच का कुछ आंकड़ा है, इतने सिख मारे गए। उस समय हम लोग सर्विस में थे, ट्रेनिंग में आ चुके थे। वो दुर्भाग्यजनक जो सीन है वो हम लोगों ने देखा। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी। तो सिखों के विरुद्ध जो ये दंगे हुए, उसी के आरोप में सज्जन कुमार सिंह जी को आजीवन कारावास दिया गया है। उसमें आपने सुना कि कैसे दंगे भड़काने, सांप्रदायिकता के आग फैलाने के आरोप में उनको यह सजा दी गई है। लेकिन चूंकि इतिहास का हमारा बहुत माइलस्टोन है ये घटना, इसीलिए जानकारी होनी चाहिए, राइट। मित्रों, एक मैं खबर आपको, सूचना और देना चाहूंगा, वो ये है कि आज के करंट कंटेंट में जो आर्टिकल डाला गया, ये हिंदू में छपा था, उसका हिंदी वर्जन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एडिटेड हिंदी वर्जन। उसका शीर्षक है वर्तमान परिदृश्य में सहकारी संघवाद, वर्तमान परिदृश्य में सहकारी संघवाद। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब इसे जरूर पढ़ें। वैसे करंट कंटेंट आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी अखबारों में जो बहुत अच्छे आर्टिकल छपते हैं उसका हिंदी वो रूपांतरण ही नहीं होता है, बल्कि उसमें जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो बकायदे रेफरेंस के साथ दिए होते हैं। तो उससे आप सबको काफी तैयारी में मदद मिल सकती है। आइए अब मुख्य विषय के बारे में बात करते हैं। फिर से न्यायिक विलंब विषय मैंने क्यों लिया है, इसका बहुत स्पष्ट कारण है और आप समझ भी गए होंगे कि ये घटना जो दंगों वाली है, जिस पर कल न्यायालय का फैसला आया है और जिसमें उन्होंने सज्जन सिंह को आरोपी बना ठहराते हुए अभी और बकायदे आजीवन कारावास दिया है, 34 साल के बाद ये फैसला आया है। 1984 की घटना है, 2018 में ये फैसला आया है, 34 साल। इससे पहले भी आपने एक दो घटनाओं के बारे में देखा कि 31 साल, 30-30 साल, 35-35 साल में फैसले हो रहे हैं और ये फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हुए फैसले हैं, क्योंकि जो 1984 के दंगे हैं वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि आपने देखा कोर्ट ने यहां तक कहा कि 1947 के दंगों के बाद ये पहली इतनी बड़ी, आजाद भारत के पहली इतनी बड़ी घटना है, दंगों से जुड़ी हुई इतनी बड़ी घटना है, और उसका फैसला आने में 34 साल लग गए। इसको लेकर के आप कुछ विचार करें। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो मुद्दों पर सोचे, जब तक आप मुद्दों पर सोचने की आदत नहीं डालेंगे तब तक ये मान करके चलिए कि मेंस के आप बहुत सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेंस के अगर आप क्वेश्चंस देखें तो उसमें अक्सर आपसे अपनी ओपिनियन की कोई गुंजाइश छोड़ दी जाती है, तो आप अपनी ओपिनियन देंगे कैसे और आप सोचेंगे कैसे। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने आसपास के प्रति सतर्क रहिए। सतर्क होने का यह मतलब नहीं है कि केवल सुन रहे हैं, बल्कि यह है कि सुनने के बाद गुन भी रहे हैं। और जब आप किसी भी टॉपिक पर विचार करते हैं तो बट नेचुरल कि वो जो विचार है जिस पर आप कर रहे हैं उसमें एक तरह से मैग्नेटिक करेक्टर आ जाता है, मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्षमता आ जाती है। चुंबकीय क्षमता का मतलब है कि फिर वह अपने लिए बकायदे अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को आकर्षित करने लगता है। यह अनजाने में होता है, यह विचार प्रक्रिया का एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। उदाहरण के तौर पर जब हम न्यायिक विलंब के बारे में मान लीजिए कि बात कर रहे हैं और इस पर सोचना शुरू करेंगे तो आपको दो तीन घटनाएं ऐसी याद आ जाएंगी कि उनमें भी विलंब हुआ, उनमें भी विलंब हुआ। इसके साथ ही साथ फिर आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि विजय माल्या को भारत से भागे हुए कितना वक्त हुआ है, तो आप सोचेंगे कि दो तीन साल हुए हैं, ठीक है दो तीन साल हुए। वहां कोर्ट में मामला चला और बकायदे एक कोर्ट से फैसला आ गया, दो तीन साल में फैसला आ गया। इसके बाद फिर आपने अगर अखबारों को ध्यान से पढ़ा हो या मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को ध्यान से सुना हो तो उसमें एक बात कही गई थी कि अभी भी विजय माल्या ये नहीं कि पूरी तरह से अब वहां से बरी हो गए हैं, बल्कि ये था कि वो इस जजमेंट के खिलाफ वहां के हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अगर हाई कोर्ट में भी उन्हें यही बात सुनने को मिलती है तो अपर कोर्ट में उससे भी ऊपर जिसे सुप्रीम कोर्ट सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इस पूरी प्रक्रिया में एक साल लग सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक साल तक वे और इसका फायदा उठा सकते हैं या जो भी कह लीजिए आप, एक साल। यानी कि इतनी बड़ी घटना को फिर हायर कोर्ट में दो दो हायर कोर्ट में जाने पर भी एक साल ही लगेगा, यानी कि वहां भी फैसला हो जाएगा। हमारे यहां क्यों 30-35, 35-35 साल लग रहे हैं? चलिए आप कह सकते हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया होती है, ये होती है, लेकिन एक बात कभी कभी सोच करके देखिए कि न्यायालय के पास अपनी बहुत बड़ी शक्तियां हैं और कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। और न्यायालय ये बात अक्सर कहा करती है कि उनके पद खाली पड़े हुए हैं तो जजमेंट में देरी हो रही है, ठीक है वो कहना बिल्कुल सही है। भारत में जो औसत न्यायाधीशों की संख्या है वो दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है, इसीलिए मुकदमे के ढेर लगते चले जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी सोचने पर यह लगता है कि देखिए न्यायालय कुछ ऐसे भी स्पेशल कोर्ट स्थापित करती है जो जिसको कहा जाता है कि आप 6 महीने में जजमेंट दीजिए, इसका फैसला 2 साल में हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार को या राज्य सरकारों को यह आदेश दिया जाता है कि आप 3 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट पेश कीजिए, यानी कि कोर्ट को यह अधिकार है और कोर्ट इसका प्रयोग भी कर रहे हैं कि टाइम निर्धारित कर सके कि इतने दिन में ये चीज हो जानी चाहिए। दिमाग में एक बात आती है, क्या कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपनी तरफ से ये कानून नहीं बना सकते कि इस तरह का अगर मामला है तो इसका फैसला हर हाल में 1 साल या 2 साल में आ जाएगा। कैसे आएगा? नो डाउट कि हमारे यहां ये कहा गया है कि जो अपराधी नहीं है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही उसके लिए कुछ अपराधियों को छोड़ना क्यों ना पड़े, चलिए वो एक सिद्धांत के रूप में सही है। लेकिन इस विलंब होने का फायदा उठा कौन रहा है, क्यों विलंब होते हैं, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं जो इसकी जांच पड़ताल कर रही होती हैं वो रिपोर्ट नहीं पेश करती हैं। अब रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करती, तो चाहे उन पर राजनीतिक दबाव हो सकता है या भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है। वकील लगातार चूंकि अपने लाभ के बारे में सोचते हैं तो पेशी बढ़वाते चले जाते हैं, क्योंकि जितनी पेशियां होंगी हर पेशियों की उनको फीस मिलेगी तो वो इसी बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि मामला लंबा खींचे। अगर किसी वकील को लग रहा है कि उसकी तो इसमें हार हो जाएगी तो वो भी चाहता है कि भैया लंबा खींचते रहे, हार होने पर तो बदनामी होगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये जटिलताएं हैं और हम लोग किताबों में अखबारों में आर्टिकल्स में ये सब चीजें पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता आप सबको कि अगर कोर्ट कह दे कि इसका 2 साल में फैसला होगा, आपको जो भी जांच पड़ताल करनी हो आप दे दीजिए वकील को, कि जो कुछ भी आपको गवाही लानी है वो करनी है आप दे दीजिए, अदरवाइज हमारे पास जो भी सबूत होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हम उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना फैसला सुना देंगे। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि सब अपने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि समय पर फैसला आ जाए। अपवाद स्वरूप कुछ चीजों को आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है, जैसे आयोग बनते हैं तो ठीक है काम पूरा नहीं हुआ तो 6 महीने और बढ़ा देते हैं, इस तरह से कुछ मामलों में किया भी जा सकता है। तो खासकर न्यायिक विलंब वाले मुद्दे को लेकर के मैंने थोड़े से आज अलग तरीके से आपसे बात करने का निर्णय लिया था और वो उसके बारे में मैंने आप सबसे थोड़ी सी बात की है, और मैं चाहूंगा कि दूसरे जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनकी भी तैयारी या टॉपिक है उनकी भी तैयारी आप थोड़े बहुत रूप में इस पैटर्न से भी करें। तो मित्रों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप सब देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। मेरे पास कांतेश चौरसिया का मेल आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री में जो प्रश्न आए थे उसमें बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे वे थे जिनकी चर्चा डेली ऑडियो लेक्चर में की जाती है। तो कांतेश आपकी इस सूचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत एकेडमी की तरफ से आभार। और देखिए बहुत ही सामान्य सी चीज है कि अगर आप बहुत अच्छा सिलेक्शन करके और पढ़ाई करते हैं चीजों को सुनते हैं तो ऐसा ही होता है, मतलब ये कोई बहुत आश्चर्य और जादू की बात नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हमारी दृष्टि इतनी पैनी और इतनी गहरी और व्यावहारिक होनी चाहिए। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स हैं, कविता वर्मा अमेठी उत्तर प्रदेश से, मनोज अहिरवार सागर मध्य प्रदेश से, रीना कुमारी पवन, रोहित चौधरी नैनीताल उत्तराखंड से और काजल रावत, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।